ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज मधुबन में हमारे इस मॉर्निंग के सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप में दो विशेष आत्माएं आई हैं, डॉक्टर अशोक मेहता जी और उनके युगल शिरिन बहन जी। डॉक्टर अशोक मेहता को तो हम सब जानते हैं कि ये मुंबई के BSES हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अवार्ड्स मिले हैं। और सर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आज हम इनसे सुनेंगे। जो हम इनके बारे में जानते और हमने देखा इनको BSES में, सर बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी है। जब भी हम सर के केबिन में जाते थे तो सर के टेबल पर हमेशा मुरली रहती थी और मुरली पूरी हाईलाइटेड रहती थी, तो हम देखते थे कि एक स्टूडेंट की तरह सर कैसे पढ़ते हैं इतने व्यस्त होते हुए भी। और काफ़ी सेवाओं में इन्होंने पार्ट लिया, जैसे माई इंडिया, हेल्दी इंडिया, माइंड बॉडी मेडिसिन में भी इनका बहुत विशेष योगदान होता है। विहासा के बहुत सारे वर्कशॉप्स अलग अलग जगह पे इन्होंने किए हैं, ऐसी बहुत सारी बाबा की सेवाएं इन्होंने की हैं। और हमें भी विशेष सर की पालना और प्यार मिला है BSES में। और एक बात हम बताएंगे कि ये वो आत्माएं हैं जिनको स्वयं भगवान ने डायमंड हॉल की स्टेज पर हार पहनाया था। और ऐसा दृश्य संगम युग पर बहुत कम लोगों को देखने मिलता है और जिनके साथ ये हुआ। तो बाप दादा ने स्वयं भोग का जो हार होता है वो उठ के सर के गले में पहनाया था, वो सीन अभी भी हमको याद है। तो ऐसी विशेष आत्मा आज हमारे साथ है और उनके साथ उनके युगल शिरिन बहन जी हैं, जिनको तो हम इतना क्लोज नहीं जानते पर दूर से ही देखते हैं तो बहुत मधुर, बहुत शांत स्वरूप। और सर जैसे ये भी बहुत ज्ञान योग में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं और ये भी एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। तो इन दोनों से आज हम सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हमें नहीं लगता कि इस पूरे ब्राह्मण परिवार में ऐसे कोई आत्मा होगी जो सर को नहीं जानती हो। यहाँ तक कि कहा जाता है इज एन आइकन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, इन द फील्ड ऑफ कैंसर। ये एक ऐसी महान विभूति है कि मेडिकल साइंस में इस लेवल तक पहुंचने वाली हमें नहीं लगता और कोई दूसरी आत्मा होगी। अगर सर का बायोडाटा देखा जाए तो वो पता नहीं कितना पेजेस का होगा और कितने घंटे उसको बताने में लग जाएंगे। तो आज तो हम मेडिकल वाली बात नहीं कर रहे हैं, परंतु एक बात जो मुझे सर के विषय में कुछ समय से पता चली, वैसे हम भी सर के साथ थे, 3 साल तक लगभग हम मुंबई में रहे, पर वो बात हमें तब पता नहीं चली, और वो थी कि सर की आध्यात्मिक यात्रा इवन बिफोर ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले ही जो उनकी यात्रा थी अध्यात्म की, बचपन से लेकर ही वो इतनी विशाल, इतनी तीव्र यात्रा थी कि मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले शायद ही ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संस्था जहाँ वो नहीं गए होंगे। हर तरह से भगवान को खोज रहे थे और लास्ट में यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद भी उनके द्वारा बाबा ने इतनी सारी महान सेवाएं की कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस दिन हम पहले शिरिन बहन जी से और बाद में सर से उनकी जो बचपन से लेकर तो अध्यात्म की यात्रा है, कैसे वो बाबा से जुड़े और यहाँ बाबा के बनने के बाद भी कैसे अभी उनका पूरा के पूरा परिवार कैसे इस ज्ञान में आया, चल रहे हैं और वर्तमान समय उनका क्या पुरुषार्थ है, वो हम सुनेंगे। तो सबसे पहले शिरिन बहन जी से हम सुनेंगे। जैसे हिना बहन ने कहा, हम भी शिरिन बहन जी से ज्यादा संपर्क में तो नहीं है, परंतु हमें लगता है वो दिव्य दर्शनीय मूर्त है। उनको देखकर ही बहुत सारी चीजें, जो शांत स्वभाव उनका है, मीठा स्वरूप उनका है, उसको देखकर ही बहुत सारी सेवाएं होती रहती है। तो सबसे पहले शिरिन बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति। ठीक है ना? ओम शांति। मैं मेरा अनुभव पहली दफा शेयर कर रही हूँ और दूसरा कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो माफ करना। वो बीच में मुंबई की हिंदी है तो सब आ जाता है, महाराष्ट्र मराठी भी आ जाती है, गुजराती भी आ जाती है। आध्यात्मिक खोज, मैं 5 साल की थी तब से एक खोज मेरी चालू थी। मैं जैन घर में जन्मी, जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर है आदिदेव। मैं जब मंदिर में जाती थी, एक्चुअली जैन में देहरा सर बोलते हैं, तो 24 तीर्थंकर का सब मूर्ति रहती थी उधर। तो पहले से सब जगह पे मैं जाती लेकिन किधर मन नहीं लगता, आदि देव की मूर्ति के पास आती तो बहुत अच्छा लगता। तो तब से मैं जब भी मंदिर में जाती तो आदि देव की मूर्ति के पास ही बैठती। और मालूम नहीं, ये टाइम तो मेरी उम्र तो बहुत कम थी, हमेशा मैं पूछती कि मैं आपको किधर ढूंढूं, आप किधर हो, मूर्ति में से तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हर रोज जाके यही प्रश्न, और दूसरा क्या चाहिए, मेरे को आपके जैसा बनना है, बस कोई प्रार्थना भी नहीं आती थी ये टाइम। ऐसे बहुत समय ऐसे चला। इसके लिए मैं साधु संत साध्वी जी, हमारी जैन साध्वी जी, उसका बहुत मैं संग करती थी। लगता था कि शायद उनके पास से मालूम पड़ जाएगा कि किधर है आदिदेव। ऐसे संत समागम, कोई भी साधु संत महात्मा किधर भी आएगा तो मैं भाग के उधर सुनने के लिए जाती थी। और घर में मेरा पिताजी और माताजी भी बहुत स्पिरिचुअल थे। पिताजी लॉयर थे लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल थे। तो पहले तो मेरा गुरु वही बना। बचपन में पिताजी ने कर्म की थियरी मेरे को सिखाई। मैं इतनी समझ तो नहीं सकती थी लेकिन वो बहुत ही मेरे पीछे पुरुषार्थ करते थे और बताया कि कर्मातीत हो जाते तब भगवान हो जाते, इटले मीन्स के जन्म मरण का चक्र में से छूट जाते और ऊपर चले जाते हैं। तो फिर मैं बोलती थी कि वापस ही नहीं आता है तो ऊपर वो लोग को कंटाला नहीं आता है, बैठ के सारा दिन क्या करेगा। हर रोज मेरी साथ में उनके साथ में मेरा यही प्रश्न रहता था कि क्यों ऊपर बैठते हैं, नीचे क्यों नहीं आता है, वो तो कोई भी आदमी थक जाता है ऊपर बैठ के। लेकिन वो भी पीछे कुछ क्यों इधर तक है कि मोक्ष, हमारे जैन में भी ऐसा है कि मोक्ष में जाओ वापस आता नहीं है आत्मा वापस। तो फिर बाद में एक्चुअली मैं इधर मुंबई में आई कॉलेज में। मेरा जन्म था डीसा में, एजुकेशन पालनपुर में, फिर कॉलेज मुंबई में आके किया। तो इधर आके भी यही मैं ढूंढती थी कि किधर कुछ सुनने के लिए जाऊं, क्या करूं। फिर एक प्रसंग हुआ 1983 की बात करती हूँ। मैं ओशो की अष्टावक्र महागीता पढ़ रही थी। मैंने बहुत पुस्तक पढ़े, काफी काफी पुस्तक, लगभग ओशो का बहुत ही मैंने स्टडी किया। उसमें एक दिन मैं अष्टावक्र महागीता पढ़ रही थी, तब उसके अंदर इतना आत्मा का वर्णन वो पढ़ के मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी मेरी आत्मा छूट जाए तो मैं किधर जाऊंगी, क्यों मैंने तो अब तक तो कुछ किया ही नहीं ऐसा जो अंदर वर्णन है ऐसा। और बाद में बहुत ही मेरे को दुख हुआ, बहुत रोई आधा घंटा तक। फिर मैं थक गई तो ऐसे ही लेट गई मेरे बेडरूम में। 5-10 मिनट के बाद छत के ऊपर से एक फेस दिखाई पड़ा। वो छत के फेस के आंखों में से इतनी रोशनी मेरे पर आई, मैं बोलता मैं तो ये सहन नहीं कर सकती हूँ, वापस आंखें बंद कर दी, वापस रोशनी आई। तो मैं बहुत हंसने लगी, मालूम नहीं क्या, मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मन में ऐसा प्रश्न उठा, मेरे को इतना शक्तिवान बनना चाहिए जो रोशनी मैं मेरे में ले सकूं। फिर मैं मेरी एक सहेली से बात किया कि ऐसा अनुभव हुआ, तो बोला कि तू गुरु की शोध में है ना, तो तेरे को बहुत अच्छा गुरु मिलेगा। फिर एक बाद में भी बहुत ही टाइम निकल गए और मेरी खोज तो चालू रही, इधर जाऊं इधर जाऊं, बहुत ही जगह पे हम दोनों साथ में, हर जगह पे हमारी दोनों की एक ऐसे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन अध्यात्म में पहले से दोनों एक ही ट्रैक पे चले। तो बाद में भी थोड़ा समय के बाद मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि इधर तो इतना ढूंढती है तो इधर एक राजयोग सेंटर है, उधर वो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, तो उधर जा। तो मैं उधर गई, तो उधर ही बहन योगिनी बहन बैठी थी, ये भी जैन थी मैं भी जैन थी, तो हमारे साथ में ऐसे पहले वार्तालाप चालू हुआ। फिर पूछा कि तू क्या करती है, तो एक टाइम में एक अस्पताल में ऐसे सेवा देती थी, तो मैं बोला उधर मैं सेवा करती हूँ। फिर बोला कि तेरा हस्बैंड क्या करता है, तो मैं सब बताया। फिर मेरे पास कार्ड था, तो मैंने बोला कि एक कार्ड रखो, कभी भी ज़रूरत होएगा तो आप बोल सकते हो। एक कार्ड दे के फिर मैं तो चली गई, फिर वापस मैं गई नहीं दूसरी दफ़ा सेंटर पे। पर जब दादी जी उधर आई, गुलजार दादी का प्रॉब्लम हुआ, तो गोपाल भाई ढूंढ रहे थे तो हमारे घर में आए, आके मिले। और दादी जी का ऑपरेशन होने के बाद बड़ी दादी ने बोला कि आप माउंट आबू आओ। तो वो टाइम भी सोनू को भी वो में वैकेशन पड़ रहा था, तो हमने सोचा चलो साथ में सोनल को भी लेके जावे। और हम एक टाइम एक जैन गुरु से हमारा घर में रखा था और हम लोग जैनिज्म पे सीख रहे थे सब, तो उनको भी बोला कि आप हमारे साथ में चलो। तो हम चारों जन इधर आए आए और पांडव भवन में गई और बाबा की झोपड़ी में गई, तो झोपड़ी में जो फेस था वही फेस मैंने देखा था। तो मैं सोनल को बोला, सोनल वही फेस था जो मैंने 83 में देखा था। बोले मम्मी तेरे को बराबर याद है? मैं बोला मेरे में तो छप गया वो फेस, मैं तो आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, जो आर्टिस्ट होती थी तो मैं बराबर रखती थी, लेकिन तो एकदम, लेकिन मेरे को क्या, बाबा की जो मुस्तेज थी ना वो मैंने वो जो फेस देखा उसमें नहीं थी। तो मैं थोड़ी सोचने लगी कि एब्सोल्यूट वही फेस है तो ये क्यों नहीं। फिर मैं बोला जाने दो, उसके बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। तो मेरी खोज 5 साल की थी, तब के थी, और इधर हम 1989 में, 88 में दादी जी का ऑपरेशन हुआ, 89 में फर्स्ट टाइम हम इधर आए। ये ऐसे घूमने के लिए, लेकिन ऐसे तो माउंट आबू में हम लोग आए थे, लेकिन अपने इधर नहीं आए थे। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, सुनो 83 तक तो मैंने कभी नाम भी नहीं, जूस की में इतना बड़ा सेंटर, इतनी प्रवृत्ति, लेकिन हमने नाम भी नहीं सुना था। जब मेरी फ्रेंड ने बोला कि इधर सेंटर है तब मैं गई, लेकिन तब भी मैंने चालू कुछ नहीं किया। जब मैं इधर आई और झोंपड़ी में तो मैं देख के एकदम, मैं बोला ए फेस था। फिर मुरली पढ़ने लगी, तो मुरली में बाबा दिलवाड़ा देरासर का बहुत, दिलवाड़ा मंदिर का बहुत बहुत समय आता है, तो शुरुआत में क्या वो विश्वास नहीं बढ़ता था, श्रद्धा नहीं बढ़ती थी, क्यों दूसरे दूसरे बहुत स्टडी किया था ना, तो मगज में बहुत भरे रहता, तो निकालने में तकलीफ तो होती है थोड़ी, लेकिन इस एक कनेक्शन से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि बचपन से मेरा कनेक्शन आदि ईश्वर से सा मैं ढूंढती थी, लेकिन फाइनली मैं उस जगह पे आ गई जिधर मेरे को आने का था। और आने के बाद तो वो टाइम पे प्रकाशमणि दादी जी थी, उसका तो प्रेम इतना मिला कि कुछ अभी भी याद आता है तो होता है कि दादी ने बहुत प्रेम दिया। बाबा ने तो शायद हमने नहीं देखा है, लेकिन दादियों का प्रेम नहीं, उसमें तो प्रकाशमणि दादी। और दादी गुलजार से बहुत नजदीक थे, क्यों ऑपरेशन के हिसाब से कभी भी जाओ मिलो दादी, इतनी बातें। दादी भी मेरे को पूछती थी कि तेरी बात सुनाओ तू कैसे कैसा लगता है, तू पहले क्या करती थी। तो मैं दादी को तो ऐसे ही सुनाती थी जैसे गुलजार दादी, तो मेरे को लगता था कि कोई मेरी माँ के कैसे है उसे इतना अच्छा कि कोई भी कैसे भी मैं बोलती थी उनके साथ में। तो ऐसे यात्रा तो सर उधर थी, लेकिन जब इधर आई तब 1990 बाद में, पहले तो मुरली में भी कुछ समझ नहीं पड़ता था कि क्या है क्या नहीं, क्यों है कि रजनीश जी को बहुत पढ़ा सुना था ने, तो शुरू शुरू में लगता था कि क्या है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। बाद में उसकी गहराई समझाई, और अभी तो पुरुषार्थ तो चलता है, लेकिन ऐसे बाबा का बहुत ऐसे लगता है एवरी टाइम आई फील के ही इज ऑलवेज विथ मी। और कुछ भी सोचती हूँ ऐसे, अभी तो ज्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ भी चीज की जो भी इच्छा भी करती हूँ तो बाबा इतनी जल्दी एकदम पूर्ण कर देते हैं। तो मैंने सोचा अभी तो कुछ ऐसा इच्छा ही नहीं करना है, लेकिन अभी ऐसा एहसास होता है कि एकदम बाबा बहुत ही संभाल रखता है, ज्यादा ही लगता है कि ऐसा ही लगता है कि अपने साथी है एकदम। तो अभी अध्यात्म की यात्रा चालू तो है, और फाइनल ने मैंने सोचा है कि बाबा के साथ ही जाना है, जाने का ऐसा दज के बाबा के हाथ में हाथ लेके बाबा लेके जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। सचिन भाई का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और कुछ बातें जीवन की आपके साथ शेयर करने का बताया। जैसे ही उन्होंने बताया हमारी ये जो यात्रा आध्यात्मिक यात्रा, शायद आपने तो बचपन बताया, मैं समझता हूँ अनेक जन्मों की यात्रा हो गई। हमारे संस्कार साथ में लेके आते हैं, माँ बाप से भी संस्कार मिलते हैं, शिक्षकों से भी संस्कार का सिंचन होता है। ऐसे मेरा बचपन भी बहुत अच्छा आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर रहा। सबसे पहली मुझे याद है मेरी नानी की, वो छोटी थी करीब 4.5 फुट की होगी, और पालनपुर में रहती थी बाजू में, और हम बम्बई में पैदा हुए थे, और हर वेकेशन में पालनपुर जाते थे मामा के घर, सब जॉइंट परिवार होता था उस समय। और ये जो परिवार था वो नवाब के साथ जुड़ा हुआ था, मेरे जो नाना थे उनके हर हाइनेस के सेक्रेटरी थे, उनके जो बड़े भाई थे वो चीफ मैजिस्ट्रेट, उस समय में वो चीफ मैजिस्ट्रेट माना वो किसी को फांसी पे भी लटका सकते हैं। मैंने बहुत तो राज्य के इतने नज़दीक होने से उनके घर में ऐसे तो आप जाएंगे तो महाड़ बोलते थे एंट्रेंस, उसमें एटलीस्ट 10 लोग तो बैठे होते थे, कुछ भी काम बताओ उसके लिए। और ये हमारी नानी थी, मैं देखता था कि वो भोजन करके अपने हाथ से बर्तन साफ कर रही है, मिट्टी से साफ करते थे। जब हम बंबई से पालनपुर जाते थे तो उस टाइम में छुक छुक गाड़ी होती थी ना, वो कोयले से चलती थी, तो पूरा शरीर कोयले से भरा होता था। और हम लोग तो पैर को 12 बजे करीब वो गाड़ी पहुंचती थी, उस टाइम मीटर गेज की छोटी गाड़ी थी। तो वो हमें बचपन में हमें बाथ देती थी, घस घस के इतना छोटा एक, हम उसको कटोरा कहेंगे, ऐसा लेती थी और उसके अंदर पानी करीब 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होता होगा, शायद 2 लीटर भी होगा मालूम है, और थोड़ा साबुन लगाती थी और जामरा से घसती थी। और फिर और हम जब बम्बई से आते थे तो हम लोग बाल्टी से नहाते थे हमेशा, तो उसको मालूम था कि बच्चे लोग पानी बहुत खराब करेंगे, और वो पानी सीधा स्ट्रीट में जाता था। तो फिर हमने एक बार उनको पूछा कि आप ये सब क्यों करते हैं, उन्होंने समझाया कि जब पानी जाता है तो जंतु होते हैं, वह हिंसा होती है। और मैंने कहा आप बर्तन क्यों मांजती, बोले ये सब लोग बहुत पानी खराब करते हैं, तो मैं मेरा बर्तन अपने आप से हाथ से साफ कर देते हो। और वो बहुत जाड़ा खद्दर का साड़ी पहनती थी और पाँव में जूते नहीं पहनती थी, मोजड़ी पहनती थी जो कंतान की होती थी। तो हमने पूछा ये सब आप क्यों करते हैं, तो हमारे नाना थे उनको तो बहुत गुस्सा था, ये क्या पहनती है पता नहीं। तो उन्होंने कहा एक बार हम हमारे जो अपासरा कहते हैं जहाँ ऐसे सेंटर होता है वैसे, वहाँ साधु साध भी आते हैं, तो एक साधु जी आए थे, उन्होंने उन्हें गांधी जी के बहुत उनसे प्यार था, तो उन्होंने सबको कहा देखो भारत का स्वातंत्र संग्राम चल रहा है, हमें खद्दर पहनना है और स्वदेशी वापरना है और चमड़े की चीज नहीं वापरनी। तो हमारी नानी ने हाथ जोड़ दिया, उस टाइम तो कहते थे एक बार हाथ जोड़ा बात खत्म हो गई, तो जब घर आई तो पता चला कि तो ये व्रत लेके आ गई है। तो हमारे नाना जी तो बहुत गुस्से में थे कि ये क्या किया, क्योंकि हम राज्य में काम करते हैं, स्वतंत्र संग्राम के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं होता था। तो ऐसी ये जो नानी थी उसके संस्कार इस छोटे मन के ऊपर बहुत पड़े, तो मुझे भी गांधी के बारे में जानने की उत्कंठा हुई। और जैसे हमारे सचिन भाई ने मेरे सत्य के प्रयोगों ये पुस्तक गुजराती में पढ़ा, मारा सत्यना प्रयोग, और उसके असर बहुत गहरी पड़ी जो मैं समझता हूँ आज तक रही है। तो ये आध्यात्मिक कला का पहला चरण था।
आप महात्मा गांधी जी से मिले?
नहीं, उनको देखा था एक बार, उस टाइम गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और वो जू में आके रुके थे, और वहाँ शाम को प्रार्थना होती थी सभा, तब मेरे पिताजी के साथ गया था, बरोबर याद है। उस टाइम जू का रास्ता नहीं था, एक केड़ी थी और पुष्कर लोग आए थे, और कई लोग फ्रूट्स लेके आए थे उनके पास रखने के लिए। तो ये थोड़ा सा याद है लेकिन इतनी मेमोरी है। लेकिन उसके बाद में गांधी जी की एक बात बहुत प्यारी लगी थी, वो अनासक्त कर्मयोग, वो उनके हर चीज के अंदर खुद का काम खुद करना, जैसे खाना भी साफ करना, अनटू द लास्ट जो गरीब में गरीब आदमी उसकी सेवा कर। तो ये सब चीजें पड़ी थी। और बाद में हमारी एक शिक्षिका थी वो जेल में गांधी जी के साथ थी येरवड़ा के अंदर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई उस समय की बात है। तो वो जब आती थी तो साथ में वो काफी स्टोरीज कहती थी, और फिर कभी कभी पत्र लेके आती थी और पढ़ती थी क्लास के अंदर। तो उनके अक्षर देख के बहुत अच्छा लगता था। उस समय छोटे थे, तो ये मैं समझता हूँ 40s की बात है। तो ये जो संस्कार पड़े, और उसके बाद में हमारे एक संस्कृत के शिक्षक थे, वो संस्कृत बहुत अच्छा सिखाते थे। तो मैंने सोचा कि गांधी जी जैसे लॉयर हुए, बैरिस्टर हुए, ऐसे हमें भी डॉक्टर नहीं, हमें लॉयर होना है और संस्कृत पढ़ना है, बनारस जाना है। तो मैंने पिताजी को कहा जब मैट्रिक पास हुआ कि मुझे तो संस्कृत पढ़ना है, तो उन्होंने कहा पागल हो गया है, भूखे मरेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे। तो उन्होंने मेरी एक मासी की लड़की थी उसको बुला लिया, तो उन्होंने आके मुझे समझाया कि तू मेडिसिन में क्यों नहीं जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो सलाह देते हैं तो उस प्रकार मैं करूँगा। और उसके बाद में जब मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, तो मेरे पिताजी के पास काफ़ी प्रॉपर्टीज थी बॉम्बे में, और सब जब प्रॉपर्टीज होती उसके साथ में कोर्ट केसेस भी होते हैं। तो जब मैंने कहा कि अब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो बहुत नाराज़ हो गए। मैंने कहा आपसे बात तो हुई थी कि मैं मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कहा अब तू मेरा तो काम का नहीं है, दूसरे 5 साल तो मैं तेरे को देखूंगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ कि मेडिकल कॉलेज में गया, और फिर उसके बाद में घर से मैंने अभ्यास के अंदर काफ़ी समय जाता था, और मेरी एमएस की परीक्षा के बराबर 15 दिन के पहले मेरा पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो एक चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी की, तो जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो सेवा ज़्यादा करना, मुझे अच्छा लगा ये भी। और गांधी जी की खद्दर भी पहनता था, कॉलेज में गया तो खद्दर पहनने का चालू किया और बुनने का चालू किया। अंबर चरखा उस टाइम नया नया आया था, तो अंबर चरखा सीखा। कोविड के परीक्षा हिंदी की सब राष्ट्रभाषा की परीक्षाएं दी। तो ऐसे एक प्रकार से विनोबा जी का भूदान चल रहा था, तो उसके बारे में मैं काफ़ी पढ़ता था। विनोबा जी की गीता भी बहुत अच्छी लगती थी, गांधी जी की गीता पर भी काफ़ी अध्ययन किया था। मेरी एक टेरेस थी जहाँ हमारा घर था, जो हमारा मकान था, टेरेस के ऊपर 10x10 की एक कैबिन थी, जो वॉर टाइम के अंदर ये बनती है, फोल्डिंग होती है, तो लाके ऊपर रखी थी। तो वो मेरा कमरा था, और उसने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि वहाँ मेरे टेबल पे 2 तस्वीरें रखी थी, एक थी गांधी की और एक थी विवेकानंद की। और रात के समय जब बारिश होता था बम्बई में, तो बिजलियाँ बहुत होती थी, और ऐसा वातावरण इतना अच्छा लगता था। और एक ही इतनी छोटी रूम थी, उसके अंदर मेरा स्टडी टेबल था, बाजू में मेरा खटिया था। तो ये जो समय मिला अंदर जाने का, ये बहुत सुंदर रहा। तो उसके बाद में जब मैं डॉक्टर हुआ, उसके बाद में कैंसर का स्पेशलिस्ट हुआ, और ये बात बाजू में रह गई कि मुझे गांव में जाके सेवा करनी है। जो सेवा की तलब थी और मन में ही रही, लेकिन मैंने फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट किया था मेमोरियल अस्पताल में, और थोड़ा समय भी मिलता था उस समय, तो हम आध्यात्मिक प्रवचन में जाते थे। बम्बई में जैसे मैदान होते थे, शिवाजी पार्क का मैदान है, क्रॉस मैदान है, उस मैदानों में काफ़ी आध्यात्मिक प्रवचनें होती थी, उसको गीता ज्ञान यज्ञ कहते थे। तो उस समय में स्वामी चिन्मयानंद के काफ़ी ज्ञान यज्ञ में जाता था। और एक बार मैंने देखा कि आचार्य रजनीश का गीता यज्ञ चल रहा था, और वहां लोग बाहर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा अंदर जाके क्यों न देखे, और न्यूज़पेपर में काफी पढ़ा हुआ था उनके बारे में कि बहुत कंट्रोवर्शियल गुरु थे, तो कंट्रोवर्सी हमेशा अच्छी लगती है जब यंग होते हैं, तो मैंने कहा हम तो उनको जाके जा सुनेंगे, लेकिन डर लगता था कि शायद किसने देख लिया, तो क्योंकि उस समय मैं टाटा अस्पताल में काम करता था, तो मैंने एंट्रेंस के ऊपर वो कहते थे 1 रुपया लेते थे और आपको चेयर देते थे, वो आखिर में होती थी, आगे लोग बैठते थे तो मैं पीछे जाके बैठ गया, और उस 1.5 घंटे के बाद जब बाहर निकला तो जैसे हिप्नोटिक स्पेल, उनके एक एक शब्द कान में गूंज रहे थे, और हमारी शेरिन बहन भी उसी दिन वहां सुनने को आई थी, मुझे मालूम नहीं था, मैं अस्पताल में रहता था वो घर में रहती थी, क्योंकि मैं तो काम करता था रेजिडेंट डॉक्टर का, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद जैसे इतना प्रभाव व्यक्ति का, तो हम उसी समय हमारे जैनों में पर्यूषण आता था, तो उस समय पर्यूषण व्याख्यान माला चलती थी, और उसमें उन्होंने महावीर वाणी के ऊपर 11 लेक्चर्स या 8 लेक्चर दिए थे, तो उस समय हम रोज 6:30 बजे सुबह में जाते थे, और जब आते थे तो उसका असर सारा दिन रहता था, तो इस प्रकार हम आचार्य रजनीश के, उस समय आचार्य थे प्रोफेसर, और उनके पास में जाने का तो कोई चांस नहीं था बॉम्बे में, क्योंकि वो एक कमरे में एक फ्लैट में रहते थे, और वहाँ फॉरेनर्स काफी जाते थे, और हमको भी डर लगता था वहाँ जाने का कि अस्पतालों में उनके बारे में अच्छी बात नहीं होती थी, तो जब 74 में वो मूव हुए पूना, तो हम पूना गए, 11 दिन वहाँ रहे, और सुबह से शाम तक आश्रम में रहते थे, तो बहुत मजा आता था, तो इस प्रकार हमने 10-15 साल उनको सुने, और हमारा जैनिज्म का भी कुछ न कुछ आध्यात्मिक सर्च चालू थी, ऐसे जैसे बहन शरीन मैंने बताया हमारे साथ एक जो आध्यात्मिक बहुत अच्छे पंडित हम कहते थे उनको, इनका नाम था
पन्ना भाई
गांधी, तो पन्ना भाई गांधी को भी बहुत अनुभव हुए थे, उन्होंने न खाली जैनिज्म के ऊपर अभ्यास किया था मगर हर धर्म का अभ्यास किया था, और उन्होंने कहा कि मेरा बचपन के अंदर संसार खुल गया था, तो मुझे कुछ भी चीज मैं पढ़ता था तो ताबड़तोड़ पता चलता था, और उन्होंने कहा मेरे को पूर्व जन्म के बारे में भी कुछ जातीय स्मरण ज्ञान हुआ था कि मैंने दिलवाड़ा के टेम्पल में बनवाए थे, लेकिन उन्होंने कहा आज मैं जाके कहूँ तो मुझे वहां से धक्का मार के निकाल देंगे, बोलेंगे पागल हो गया है, तो इस प्रकार ये जो पन्ना भाई के पास हमने जो सुना वो हमारे साथ करीब 6-12 महीना तक हमारे साथ रहे थे, तो सुबह में वो भी अमृत वेले उठते थे और उनका अध्ययन करते थे, और फिर हमसे 1 घंटा जैनिज्म पर चर्चा करते थे, तो जब दादी गुलजार का ऑपरेशन के निमित्त में बना, उसके बाद में जब पहली बार आए तो उनको साथ में लेके आए थे, तो हम यहाँ बाजू में रहे, सुखधाम में रहे थे।
सर दादी आपके पास कैसे आए, मतलब वो जर्नी कैसी रही, दादी आपके पास कैसे पहुंची?
अच्छा, तो ऐसा हुआ था कि मैं टाटा अस्पताल में सर्जन था और काफी एक्टिव था, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये एक मेरा स्ट्रेंथ था, पढ़ाने का भी स्ट्रेंथ था, तो मैंने काफी एसोसिएशंस के अंदर सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रहा था, तो जब 88 में दादी आई उसके अगले साल मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था, और बहुत व्यस्त रहता था, 3 अस्पतालों में जाता था, नानावटी अस्पताल में मैंने कैंसर डिपार्टमेंट चालू किया था, निमित्त बना था वहाँ भी, और जसलोक अस्पताल में जाता था और ताता अस्पताल में था। तो जब दादी जी को पता चला दिल्ली के अंदर कि ब्रेस्ट के अंदर कैंसर की गांठ है, तो दादी जी उस समय चंडीगढ़ जाने वाली थी। दादी प्रकाशमणि ऑलरेडी पंजाब में थी और उनका कुछ बड़ा प्रोग्राम था। तो दादी को बताया गया कि यहाँ टेस्ट किया है और पॉजिटिव आया है, तो बाबा से पूछने का कहा। तो बाबा ने कहा बम्बई जाओ। तो दादी, बड़ी दादी ने कहा आप अभी यहाँ नहीं आएंगे, आप सीधी बम्बई जाएंगे। तो दादी को बम्बई लाया गया और उनके पहले उनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली से ली गई थी हमारे जो ताता अस्पताल के डायरेक्टर थे उनके साथ। हमेशा ये होता है ना कि सबसे बड़े डॉक्टर के पास हम जावे। तो उस टाइम हम तो सर्जन थे लेकिन हेड नहीं थे। तो जब दादी बम्बई आई, दूसरे दिन दादी बम्बई आ गए और उस समय दादी गामदेवी में रहती थी और हमारे रमेश भाई और अनिला बहन, उनकी बहन थी डॉक्टर साहब, तो अनिला बहन यज्ञ की सेवा करती थी। किसी को भी कोई स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम होता था तो अनिला बहन ऑर्गेनाइज करती थी। तो जब ताता अस्पताल में तपास की कि आज देखने का है, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तक डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा हमको तो यहाँ बुलाया गया है। तो उनको कहा गया वेट होना पड़ेगा। तब हमारे गोपाल भाई, उस समय दादी के संभाल रखते थे, तो गोपाल भाई ऐसे इंटेलिजेंस में काम करते थे, भारत के इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर। तो ये उनको ये ठीक नहीं लगा कि उन्होंने कहा 7 दिन तक हम वेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि सबके सामने मम्मा थी कि मम्मा को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और जब बम्बई लेके गए उस समय लीवर में स्प्रेड हो गया था। तो कहा हम एक भी दिन ठहरना नहीं चाहते। तो उन्होंने तलाश चालू की कि दूसरा कौन। तो योगिनी बहन से बात हुई, अनिला बहन से बात हुई, तो योगिनी बहन ने शायद बताया कि उनके पास मेरा कार्ड था, बहन दे के आई थी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को मैं जानती हूँ। तो गोपाल भाई ने कहा ठीक है। तो गोपाल भाई ने तलाश की, जैसे कहा इंटेलिजेंस के थे, तो नानावटी अस्पताल में आके मेरी ऑफिस के बाहर बैठे और पूछा सबको कि ठीक है। तो फिर नक्की किया कि मुझे बताना है। और उस समय ऐसा था कि यदि अनिला बहन को पूछे तो ये मना भी कर दे कि बम्बे नानावटी अस्पताल लेके जाना। तो उसके लिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। दादी को कहा, दादी कल मैंने उनको अपॉइंटमेंट 7:30 बजे के दी थी सुबह में, क्योंकि सब मैं 7:30 बजे नानावटी अस्पताल से मेरा काम चालू करता था। तो दादी को कहा, दादी 6:30 बजे हम टैक्सी में डॉक्टर को बताने को जाए। दादी ने, दादी तो आप जाते हैं, दादी जैसे सरल स्वभाव कैसे कहानी, आप जो भी कहेंगे हाँ ना तो होता नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दादी को लेके आए और समय शायद सेंटर के एक दो भाई भी साथ में आए थे, मैं उनको किसी को जानता नहीं था, मुझे ब्रह्म कुमारी इसका जरा भी परिचय नहीं था। लेकिन मैंने जब दादी को देखा सफेद वस्त्रों में, तो मैंने सोचा ये सन्यासी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साधु साध्वी और सन्यासियों की सेवा करता था, मुझे अच्छा लगता था। जैन साध्वियाँ, जैन साधु और माँ आनंद में जो हरिद्वार में उनका आश्रम था, उनकी बहुत जो भी सन्यासिनी होती थी ये हमारे पास आती थी। तो मैंने दादी को देखा तो सोचा कि सन्यासिनी है। तो मैंने उनको तपासा, एग्जामिन किया और फिर हमारी जो पाश्चात्य पद्धति होती है, कहते आपको कुछ पूछना है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे पास ज्ञान है उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे उनसे शेयर करना है। तो दादी ने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना है। मैंने कहा आपको पता है आपको ब्रेस्ट में कैंसर था। मैंने बोला आप ऑपरेशन कराओगे? तो हाँ। कभी? तो बोला कल। ऐसा ये तीन बात हो गई सीधी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। ये हम एक तरह से देखे तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की स्ट्रेंथ है, कोई अपने बारे में बताता नहीं और दूसरों को बारे में अभी तो बताते हैं, लेकिन उस समय किसी ने नहीं बताया दादी गुलजार कौन है। तो मैंने तो सोचा ये सन्यासी नहीं है। और हमारे पास जो भी सन्यासी आते थे तो हमेशा लोग चाहते थे कि हम उनकी फीस न लें और उनकी सेवा करें। तो हमने भी उनकी फीस नहीं ली और उनको कहा कि ठीक है आपको मैं भर्ती कर देता हूँ, कल सुबह मैं ऑपरेशन कर देंगे। और फिर वो लोग चले गए और मुझे कुछ ज्यादा पता है नहीं। शाम को मुझे फोन आया, मेरे साथ में जो डॉक्टर छोटे डॉक्टर काम करते हैं रेजिडेंट, बताया कि इनको जो आप पेशेंट हैं आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं कल, उनको डिलक्स क्लास में दाखिल किया है। मैंने प्राइवेट में अच्छी तरह से अच्छे रूम का। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दूसरे दिन गया और हमारी एक सिस्टम थी, मैं सुबह में जाता था, मैं जब अस्पताल में जाता था वो मेरे पेशेंट को लेके ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, इंड्यूस करते थे, मैंने उसको एनेस्थीसिया देते थे और उतना मैं मेरे और भी पेशेंट देख के फिर सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले जाता था। तो मैं जब दूसरा पेशेंट देख रहा था तो मैंने जब मेरे पीछे कोई खड़ा था मुझे पता नहीं था, और मैं जब मैंने टर्न अराउंड तो मैंने सामने देखा दादी प्रकाशमणि खड़ी थी। तो मैं तो जानता नहीं था, उन्होंने खुद का परिचय भी नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा मैं आपको मिलने आई हूँ क्योंकि मैं आज शाम को आबू जा रही हूँ और आप जिनको ऑपरेशन करने जा रहे हैं उनको उनके साथ में। तो मैंने उनके सफ़ेद बाल देखे और कुछ ऐसे मजाक करने की आदत पड़ गई थी। मैंने कहा ऑपरेशन मैं करने वाला हूँ, पेशेंट यहाँ है, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली, इतने लंबे से आप थोड़े चंद घंटों के लिए क्यों आए? तो कहा नहीं ये तो मेरी सखी है, मुझे बरोबर याद है। और इतनी सुंदर स्माइल देखे दादी ने बताया। तो उस टाइम तो मैं तो जानता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी कौन है। दादी 10 दिन रही या 2 हफ्ता रही, मैं सुबह में जाता था दादी फूल देती थी या तोली देती थी, मैं ले लेता था, जैसे जाता था वैसा निकल के बाहर निकल के चला जाता था। तो मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि दादी कौन है, मैंने न पूछा कौन है आप। 6 दिन जब जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। तो उन्होंने कहा आप हमारे सेंटर पे हमारे साथ भोजन लेने आए हैं। तो मैंने कहा जरूर आऊंगा, क्योंकि इच्छा तो थी कि आध्यात्मिकता उनसे कुछ बात हो। तो फिर इस तरह से हमारा ये परिचय दादी से हुआ और हम दूसरे दिन जब दादी को मिलने गए तो साथ में शिरीन बहन भी थी और हमारे साथ दादी ने भी भोजन लिया और मैं बोलता रहा वो सुनती रही। मैंने जो सुना था परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो मैंने देखा दादी तो बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। और फिर मैं निकलने वाला था तो उन्होंने कहा ये ईश्वरीय सौगात है, बहुत गिफ्ट्स दी। तो मैंने कहा मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा एक सिस्टम है कि हम सन्यासी के पास जाते हैं हम उनके चरणों में कुछ रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ईश्वरीय सौगात है। तो हमको समझ नहीं पड़ी कि ईश्वरीय सौगात क्या होती है। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया तो कहा ठीक आप कहते हैं तो मैं जरूर लेता हूँ। तो फिर जब निकलता था तो कहा आप आबू जरूर पधारे, आबू में आपको अच्छा लगेगा, हमारा आश्रम है वहाँ। तो आबू तो मुझे माउंट आबू बहुत 25 साल हो गए थे यहाँ आया नहीं था। तो हमारी दोनों की इच्छा थी कि यहाँ माउंट आबू आना। तो हमने कहा जरूर आएंगे। और फिर हम वी लैंडेड हियर वैकेशन के दरम्यान हम सब आए तो हमारे साथ में वो हमारे जैन गुरु भी आए थे, मैं समय देख रहा हूँ। तो वो जैन गुरु जब आए तो हम यहाँ चार दिन रहे, तो हर दिन सूरज भाई, शीलू बहन, रामनाथ भाई सब ने क्लास में ना, हम बैठते थे आपस में चर्चा करते थे, हम ज्यादा बोलते थे उनको कम बोलने देते थे। तो इस प्रकार ये हमारा पहला यहाँ का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ। उस दरम्यान दादी ने हर चीज बताई घूम के, दादी प्रकाशमणि साथ में घूमी और हमको पूरा डिपार्टमेंट्स बताए। उस टाइम करीब 60 डिपार्टमेंट्स थे सर बताए, तो तोली डिपार्टमेंट, भोजन का बनता है, और फिर ऐसे घूमते घूमते एक अस्पताल थी, उस समय चार बेड थे और शांति स्तंभ पे एक कमरा, उसको उस टाइम अस्पताल कहते थे। तो वो अस्पताल में हमको कहा ये हमारे यहाँ कोई भी बीमार होता है तो यहाँ लाते हैं, और उस दिन एक भाई बहुत बीमार था तो कहा आप उनको देखो। तो मैंने उसको देखा, उसको शायद हार्ट अटैक आया था, 24 घंटे से वहाँ था, पसीना से भरा हुआ था, पल्स बहुत वीक थी, प्रेशर भी शायद नहीं था। मैंने देखा उसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये भाई को आप यहाँ से जल्दी आईसीयू में ले जाएं, उसको उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। वो लोग आईवी देने की कोशिश कर रहे थे, उनको वेन्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा यहाँ तो सिविल अस्पताल है हमारा, आईसीयू तो है नहीं कुछ। तो मैंने कहा इनकी इसकी तबीयत बहुत सीरियस है, यहाँ से आप जल्दी कहीं ना ले जाओ। तो उसको फिर एम्बुलेंस बुलाई, और मेहसाना से यार कारपेंटर आया हुआ था तो उसको मेहसाना ले गए, और दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। और दूसरे एक दिन के बाद में हमको ट्रेवर टैंक पे पिकनिक पर ले गए निर्भय भाई, और रामनाथ भाई भी थे शायद। तो हम पिकनिक पर गए तो भोजन था, हमको सब घुमाया, और निर्भय भाई ने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। उनको शायद एंजाइनल पेन होता था। तो शाम को फिर उनको बम्बई भेजा गया। तो बम्बई जब आए तो एक मैं चार दिन रहा, उसमें दो मरीज, एक सेवाधारी और एक हमारे भाई साहब, और उनको बम्बई में नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया। एंजियोग्राफी हुई और नक्की हुआ कि उनको हार्ट का बाईपास का ऑपरेशन करना है, तो वो भी हुआ। तो ये सब होने की वजह से, और यहाँ हम जब घूमते थे तो हमको झील बहुत पसंद थी कि इतना सुंदर वातावरण, नक्की लेक, रोज घूमने का इच्छा होती थी। तो मैं घूमते घूमते ऐसी बात की कि आपके पास इतनी सुंदर पहाड़ी है, इतनी सुंदर वनराजी है, यहाँ का ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक अस्पताल हो तो कितना अच्छा। उस समय मन के अंदर ये विचार आया, बाबा जो संकल्प शक्ति कहता है कि आपको एक संकल्प देता है सुंदर, तो ये बात हो गई। उसके बाद में कुछ आगे उसकी चर्चा नहीं हुई। जब निर्भय भाई का ऑपरेशन हुआ तब जो हमारे दादा भाटूमल थे उनको मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा हमको एक अस्पताल बनना है। उन्होंने कहा क्या करते हो, योग करते हो या कुछ और भी करते हो, जैसे योग कोई चीज है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दादा, एक अस्पताल बनाने का सोच रहे हैं। क्या सोचा था, खाली एक बात हुई थी उतनी एक लाइन। तो ऐसे ये अस्पताल का निर्माण का बीच हमारे पहले विजिट के अंदर हुआ। वो 89 की साल थी। 89 के अंदर हमारा ट्रस्ट बना, 90 में जगह ली गई, और 91 में प्रथम फेज का निर्माण हुआ। जो 10,000 स्क्वायर फुट प्लान किया था उसके बदले 20,000 स्क्वायर फुट हो गया, 1 करोड़ का प्लान किया था उसके बदले 2 करोड़ का प्लान हो गया। तो इस प्रकार बाबा का कार्य के अंदर ग्लोबल अस्पताल में मैं निर्माण के निमित्त हुआ और बाबा ने हमारी कन्या सोनल को कहा कि ये कन्या करेगी। तो सोनल बहन तब खाली आर्किटेक्ट की परीक्षा दे के आई थी, उसका कोई अनुभव नहीं था, जीरो। तो वो भी तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा देख ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है तो कर। तो वो महा मुसीबत से उसको तैयार किया और जब वो काम करने लगी तो वो यहाँ ज्यादा आने लगी और ब्रह्म कुमारी इसका ज्ञान पहले उसको मिला, क्योंकि सब जब निर्माण का काम हुआ तो वो कभी आके महीना महीना रहती थी, डेढ़ महीना रहती थी, क्योंकि उस टाइम कैड तो नहीं था, हाथ से ड्राइंग करती थी। हमारा जो टोपोग्राफी थी ऊपर नीचे थी, तो इस प्रकार हम अनजाने ज्ञान में आ गए। और जब उद्घाटन हुआ तो पूरा परिवार यहाँ आ गया और हमको बाबा के सामने, बाबा के पास लेके गए। अभी हमको पता भी नहीं बाबा का अवतरण क्या है, मुरली सुन लेते थे कभी। ये 91 उसी समय उद्घाटन हुआ, अक्टूबर महीने में उसने। तो पूरा परिवार आया था साथ में, तो बाबा ने उसको कहा तू पंडा बन के आई है, तो उसको मालूम नहीं था पंडा क्या है, हमको भी मालूम नहीं। अच्छा, मुझे बाबा ने वरदान दिया था, बस याद है, उठाओ कलम खींचो लकीर, जितनी लंबी चाहो उतनी खींच सकते हो बाके के लकीर। तो उस समय तो जैसे कोई बात होती है तो उसका जो गुई अर्थ, ये अब 30 साल के बाद पता चलता है कि किस तरह से बाबा किस आत्मा को खींचते हैं और अपना बनाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ हम जो शुरू शुरू में आए तो वो तो सब जो हमारे अहंकार को लेके आते हैं, हम क्या कोई बड़ी चीज ऐसा समझ के आते हैं, जब यहाँ आते हैं और दादियों का प्रेम और आदर जिस तरह से देखा, मैं नहीं समझता हूँ इससे ज़्यादा हमें कुछ मिल सकता है। और दादी ने हमें कहा कि डॉक्टर साहब आप, उस समय हमारी संख्या भी कम थी, पैसे भी शायद बहुत लिमिटेड थे, दादी ने उस टाइम 10 लाख रुपए दिए थे और दादा जो हमारे अट्टमल से उन्होंने 40 लाख दिए थे और पैसे की तो ज़रूरत होती है हमेशा। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं फॉरेन में और उनको हमारा प्रोजेक्ट समझाएं कि हम अस्पताल क्या करना चाहते हैं। तो उस समय मैं पूरे विदेश के सब सेंटर में गया, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, दादी के पास, जानकी दादी के पास गया था। और फिर अमेरिका में उस टाइम 4 सेंटर थे, तो मैं न्यूयॉर्क मोहिनी बहन के पास था, चंद्रू बहन के पास सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस में था, और सैन एंटोनियो नहीं गया था, और फिर वहाँ से जापान गया था और कोबे, टोक्यो और जो भी हमारी एम्बेसीज थी वहाँ गया। तो मैंने देखा कि जहाँ गया इतना प्यार, और मैंने उस समय हंसते हंसते कहा ब्रह्मा कुमारी इसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है फोर्ड की असेंबली लाइन से निकली हुई सब बहने, एक सरी थी, उनके पास इतना प्रेम, इतना उनका चेहरा के ऊपर स्मित। तो इस तरह से ज्ञान नहीं था, ज्ञान शायद थोड़ा था, लेकिन ये जो अस्पताल का निर्माण की बाबत और उसके अंदर सारे देशों विदेश में जाना, उससे मैं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक सुंदर परिवार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाबा का ज्ञान मिला। इस प्रकार तो फिर बहुत जैसे मेडिकल विंग से जुड़े, फिर वैल्यूज इन हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम्स बहुत किए, और जहाँ भी जाता तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में मुझे खड़े कर देते थे, आप बोलो, और मुझे मालूम नहीं था तो मैं कुछ भी बोलता था. लेकिन एक चीज जरूर थी, मैं कहता था दिस इज द बेस्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और कहता था कि द बेस्ट स्कूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. दूसरा आप कुछ ना करें, उनकी सकारात्मक चिंतन को लें तो बहुत सुंदर. किसी को कहे कि परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा स्वयं देता है, तो बोलेगा आपको सुनना नहीं, ये सब गुरु ऐसे ही कहते हैं, सब बाबा ऐसे कहते हैं. तो जब ये स्वयं को भी इसका जो अनुभव होता गया, उस समय तो लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ब्रह्म कुमारी बहनों के प्रति बहुत आदर, बहुत प्रेम. तो मुझे जो काम करना था अनासक्त कर्म योग, उसके अंदर बहुत सहयोगी हुए, क्योंकि जो भी बहनें आई उनको ट्रीट करने में मुझे बहुत खुशी, एक आध्यात्मिक आनंद कहता था, ऐसा होता था कि उनके लिए मैं एक था. क्योंकि जब मेरे पास आती थी तो उसको कोई चिंता नहीं करने की, सब बाकी का काम मेरा था. तो इस प्रकार बाबा ने इस महान कार्य के अंदर एक छोटा सा कॉगविल के हिसाब से मेरा निमित्त भाव से उपयोग किया, मुझे अच्छा लगा. और मैं नहीं मानता हूं इतना प्रेम, इतना आदर, इतना बड़े परिवार, इतनी सुंदर व्यक्ति, उनका बड़ा समूह साथ में मिल सकता था. और हमारे सचिन भाई के बारे में कहूं कुछ, ये तो बहुत, हमारे पास 3 साल था, 2.5 साल था शायद, बोलता ही नहीं था, ऐसा नीचे देख के चला जाता था. तो जब वो पहली बार आया तो हमने कहा तुम आईसीयू में काम करो, तो उसको ग्लोबल में आना था यहाँ, तो मैंने उसको जरूरत है, बहुत जरूरत है, तो आईसीयू में उन्होंने काम किया. तो हमारे जो आईसीयू के डॉक्टर साहब थे उनको भाई साहब मिलने गए, तो उसने मुझे फिर बाद में फोन करके बताया आपने डॉक्टर साहब भेजा, पर ये ठीक नहीं. तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ये तो बहुत, क्योंकि मुझे उसका बायोडाटा मालूम था, तो मैंने कहा तो बहुत होशियार है, आप रखें उनको, और फिर तो आप जानते हैं. अच्छा, 2.5 साल रहा, पता नहीं कि बोलता है नहीं बोलता है. तो जब ये आपका शो ग्रुप का जो व्हाट्सएप के अंदर आने लगा, तो एक दिन मैंने सुन लिया, मैंने कहा कमाल है, हमें मालूम ही नहीं. और फिर तो मैं रोज सुनता हूँ, जब जू बीच पर जाता हूँ तो सचिन साथ में होता है. अब तो सचिन गुरु है और बहुत अच्छा लगता है. और मैं उसकी दो चीज मुझे कि उसकी याद शक्ति और चिंतन मनन, ऐसा एक ही व्यक्ति का मैंने देखा, रजनीश जी का था. मैं भगवान नहीं कहूँगा, ओशो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो उनको आचार्य के हिसाब से देखा था. तो इसकी जो बात करने की शैली है उसके अंदर रजनीश जी की बहुत छाप है, और दूसरा जगदीश भाई की, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पे जगदीश भाई ले जाते थे, रमेश भाई भी ले जाते थे, निर्भय भाई भी, जगदीश भाई हमारे यज्ञ के एक जैसे बाबा ने उनको ये वरदान दिया था कि आप जैसे संजय हैं, तो उनका जो लिखने का, मैं समझता हूँ सचिन भाई की जो वाणी है उसको छापें, तो उसी प्रकार से भी के जैसे रजनीश जी की बीती थी. रजनीश जी हमेशा 11 दिन बोलते थे, शिविर उनकी 11 दिन की होती थी, रोज 1.5 घंटा बोलते थे, और एग्जैक्टली 40 प्रिंटेड पेजेस और 440 पेज की बुक बाहर निकलते थे. तो मैं समझता हूँ हम सब बहुत भाग्यवान हैं, बाबा ने ऐसे अनेक जन्मों के महान व्यक्ति को हमारे बीच भेजी है. और आप सब और भी भाग्यवान है कि आपको एक छोटे कमरे में इतने नजदीक से उनको मिलने मिलता है। जैसे बाबा के पास पहले हम कहते थे, छोटे हिस्ट्री हॉल में आते थे, सब बाजू में बैठते थे, सबके सवाल का जवाब देते थे। बाबा फिर यहाँ आए तो भी सबको मिलते थे, फिर वहां बड़े स्टेज पर गए तो फिर तो ये आपके लिए भी अच्छा है, ये बहुत बड़ा ना हो ऐसा इच्छुक। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष है, और बाबा को जो काम कराना है उसके लिए योग्य व्यक्ति ढूंढ लेते हैं, जैसे हमारी शिवानी बहन, फिर हमने हमारी छोटी बहन को भी देखा कल, और हमारे भाई साहब श्रेया बहन, तो से हमारी हर भाई बहन इतने उत्तम कोटि के हैं, लेकिन इसमें भी उत्तम में भी उत्तम भाई साहब है। ओम शांति।
सर एक पांच मिनट में, अभी वर्तमान क्या पुरुषार्थ चल रहा है उसके विषय में एक दो मिनट में।
वर्तमान में
आप भी और शिवन बहन जी,
वर्तमान में मैं तो समय देखता, वर्तमान में तो मैं समझता हूँ ये द्विधा रही है, कभी कभी सोचता हूँ अस्त्र शस्त्र छोड़ दूँ और कुछ ना करूँ, खाली योग और अभ्यास, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं हो पाता है। और फिर हम लोगों ने आपस में एक निर्णय किया कि हर महीने 10 दिन आके यहाँ ठहरना, रुकना, पांडव भवन में शाम और सुबह जितना समय जा सके उतना करना, और बाबा की मुरलियाँ, मैं समझता बाबा की एक मुरली लेके भी हम जीवन जिए तो सफिशिएंट है, दूसरी मुरली पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो एक मुरली करनी भी अभी तक 100% कहीं हुआ नहीं है, तो परसेंटेज में है अभी। तो बाबा ने तो जो नहीं करना चाहिए वो तो बता दिया है, और हम वही कर रहे हैं अभी परसेंटेज में।
मेरा पुरुषार्थ ये चल रहा है कि अभी बस ये राग और द्वेष से परे जाना है। हर रोज मैं चिंतन करती हूँ मेरा खुद का कि चलो सारा दिन में क्या किया मैंने, किसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं किया, किसी ऊपर कभी, मैं तो क्रोध तो करती नहीं हूँ लेकिन कभी जोर से भी बोलती हूँ तो लगता है नहीं, स्वचिंतन बहुत करती हूँ कि बस ये सबसे अभी परे जाना है। अभी बाबा की सब मुरली का सार ये वही है कि बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए ये सब चीज़ों से अंदर ही झांकना है कि हर दिन मैं क्या कर रही हूँ। और बचपन से मैंने वो राग द्वेष पे बहुत पढ़ा था जैनिज्म में, तो हमेशा लगता था ये दो चीज से मेरे को परे जाना है। ओम शांति।
ओम शांति। हम सबका ये परम सौभाग्य रहा इतनी महान विभूतियों के अनुभवों से हम लाभान्वित हुए। बोलचाल में तो इतने नजदीक नहीं आते थे, लेकिन आज उनके मुखारविंद से इतने अमूल्य अनुभवों से हमको उन्होंने बताया, तो ऐसी महान विभूतियों का हम सब की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स।